आकार हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख है अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्का प्रभु की सबको देने चला ये काफिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख
शांति। पुराणों ने कहा है कि ऋषियों के दर्शन मात्र से जीवन धन्य बनता है। उन ऋषियों ने 20 साल 25 साल 30 साल साधना की और उनके दर्शन अनेकों को धन्य बना रहे हैं। तो विचार कीजिए यज्ञ के यह ऋषि जिन्होंने 40 साल तक साधना की है, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी, ऐसे अलौकिक ऋषि आज हम सभी के बीच में मौजूद है। हम सब एक हाथ की ताली से भाई जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। 1972 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। 76 में आपने अपना संपूर्ण जीवन यज्ञ सेवा में अर्पित किया। सालों तक मधुबन महायज्ञ के अंदर पांडव भवन से आप अपनी सेवाएं देते हुए जहां जहां भी यज्ञ का विस्तार होता गया अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करते रहे। आपने यज्ञ में जो बाबा की मुरलियां बनती है, ईश्वरीय महावाक्य, उन महावाक्यों में हम सभी सार धारणा बाबा के वरदान स्लोगन पढ़ते हैं, सुनते हैं। यह आपकी ही मेहनत है और बहुत अच्छी तरह से अव्यक्त महावाक्यों में से आप यह वरदान निकाल करके हम सभी के पास, मैं कहूंगी तैयार भोजन करके भेजते हैं। तो भाई जी का फिर से स्वागत करते हैं। आज का आपका विषय है संपूर्ण पवित्रता, आदरणीय भ्राता राजू भाई जी।
ओम शांति। आप सभी
एक मिनट भाई जी, क्लास पूरा होने के बाद कोई भी भाई या बहन उठेंगे नहीं, आप सभी के लिए अति आवश्यक सूचनाएं हैं।
ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद शांति वन में बहुत अच्छी योग तपस्या कर रहे हैं, प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। योग की ज्वाला, योग की तपस्या ज्वाला रूप तभी बनती है जब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है। तो आज के इस भट्टी के शुभ अवसर में एक बहुत सुंदर विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे। बाबा ने संगम युग पर असंभव कार्य को संभव किया है, जिसको दुनिया की मनुष्य आत्माएं असंभव समझती हैं। बाबा ने इतना सरल और संभव करके अपने बच्चों के आगे रखा है, जो हम सभी एक प्रवृत्ति मार्ग के अंदर रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, विकारों की अग्नि से बच करके अपने जीवन को पवित्र और स्वच्छ बनाने की बहुत अच्छी रेस कर रहे हैं। ऐसी कोई भी संस्था नहीं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर चाहे वो समर्पित हों, संन्यास किए हुए हों और उनके जितने भी फॉलोअर्स हों सबको एक जैसी श्रीमत दी जाए। बाबा का ये यूनिक विद्यालय है जहां पर हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो कुमार है, कुमारी है, प्रवृत्ति में रहने वाला युगल है, हर एक को बाबा ने एक ही नियम, एक ही मर्यादा, एक जैसी दिनचर्या बना करके दी है। जिस दिन से हम सब ने मर्जीवा जन्म लिया, अलौकिक जीवन लिया, उसी दिन से बाबा ने हम सबको संकल्प दिया, बच्चे तुम्हें मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति और कृति में संपूर्ण पावन बनना है। सिर्फ संकल्प ही नहीं दिया लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियां दिलाई जिन स्मृतियों के आधार से पवित्र जीवन बनाना, घर गृहस्थ में रह करके कमल फूल समान रहना सभी बाबा के बच्चों के लिए बहुत सहज हो गया। हम समझते हैं कि आप सभी जो आज बाबा की सच्ची दरबार में बैठे हैं, हर एक ने बहुत अच्छी तरह से मर्यादा का कंगन बांधा हुआ है, दृढ़ता का संकल्प लिया है कि बाबा कुछ भी हो जाए, कितना भी माया के तूफान आए, कितना भी युद्ध करनी पड़े, संकल्प विकल्प कैसे भी आ जाएं, लेकिन हम बाबा के बच्चे विजयी हैं, विजयी बन करके रहेंगे, विजयी हो करके दिखाएंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक ने ये संकल्प तो जन्म से ही, अलौकिक जन्म लेते ही लिया होगा, फिर भी संपूर्ण पवित्रता की जहां बात आती है, जब कोई विषय रखा जाता है तो जरूर कुछ मार्जिन उसके अंदर होती है। उस मार्जिन को समाप्त करने के लिए, सूक्ष्म संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए ये योग की विशेष भट्टियों का आयोजन किया जाता है। तपस्या के बीज से, बीज रूप बाबा की याद से पुराने विकारी संस्कारों को, बीज को समाप्त कर दिया जाए, इन भट्टियों का यही उद्देश्य रहता है। हम सभी तपस्या इसीलिए करते हैं, योग को ज्वाला स्वरूप इसीलिए बनाते हैं कि हमारे छिपे हुए संस्कार, छिपी हुई मनोवृत्तियां शुद्ध पवित्र निर्मल बन जाएं। और इसी लक्ष्य से मैं समझता हूं आप सभी इस योग भट्टी के लिए यहां पर आए हैं। मधुबन के इस संगठन में आने से, इस बेहद परिवार के अंदर आने से हरेक को एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, बाबा की सकास और हिम्मत का भी अनुभव होता है। आत्मा के अंदर बल आ जाता है, छोटी मोटी कमियां कमजोरियां इस बेहद यज्ञ में आने से स्वतः समाप्त हो जाती हैं। बाबा ने जो स्मृतियां हम सबको दिलाई हैं, तो सबसे पहली स्मृति बाबा ने दिलाई कि आप बच्चों को ही मैंने देवता बनाया था, आप ही देवी और देवता संपूर्ण पावन थे। इस चक्र के अंदर पार्ट बजाते बजाते आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते खेलते इन कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई, विकारों का साम्राज्य हो गया, पतित आत्मा बनी, शरीर भी पतित बना। लेकिन पार्ट बजाते बजाते जब चक्र का अंतिम समय आता है तो बाबा हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम कौन थे, फिर से तुम्हें वैसा ही बनना है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में तुम जिस स्वरूप में इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुए थे, कोई भी हिसाब किताब लेकर के नहीं आए थे, आत्मा संपूर्ण पावन थी, सर्व कलाएं सर्व गुणों से संपन्न थी। अब इस अंतिम समय में तुम्हें फिर से वैसा ही बनकर मेरे साथ चलना है। हर एक बाबा के बच्चे को यह स्मृति आई है कि अब वापस घर चलने का समय है, इस कलयुग की सृष्टि में अभी रचना नहीं करनी है, नई सृष्टि के लिए भगवान की इस स्थापना के कार्य में मुझे अपने मन वचन और कर्म की संपूर्ण पवित्रता का सहयोग देना है। बाबा हम सबसे यही सहयोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे जितने पावन बनते जाएंगे, जितनी इनकी मनोवृत्तियां शुद्ध सात्विक होती जाएंगी, आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी, उतना ये सृष्टि स्वतः परिवर्तित होगी, पांचों तत्वों को परिवर्तित करने के लिए, उस तमोगुण को समाप्त करने के लिए बाबा अकेले भी सब कार्य कर सकता है, लेकिन कहता है अगर मैं अकेले कर लूंगा तो तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा, देवी और देवता तो तुम्हें बनना है, साकार सृष्टि पर पार्ट तुम्हें बजाना है, इसलिए तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में मेरे साथ मददगार बन जाओ। हम सब ने बाबा द्वारा दिलाई हुई इस स्मृति के आधार पर दृढ़ता से संकल्प किया है कि बाबा कुछ भी हो जाए, प्राण भी त्यागने पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा छूट नहीं सकती। ऐसी संकल्पों की दृढ़ता के साथ हम अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का सहयोग, अपनी पावन मनसा का सहयोग बाबा के इस स्थापना के कार्य में दे रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर केवल एक विकार पर विजय नहीं लेकिन पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय। किसी ने एक विकार को जीता, ब्रह्मचर्य का पालन किया, काम विकार पर जीत पाई, लेकिन क्रोध दूसरे रूप से अगर भड़कता है, इंद्रियां शीतल नहीं होती, उत्तेजनाएं समाप्त नहीं होती, तो भी उसे पावन नहीं कह सकते हैं। एक विकार को जीतने वालों की भी पूजा होती है, उनको भी सम्मान दिया जाता है, मिलता है, पैर छूते हैं, उनके पैर धो करके भी पीते हैं, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की बहुत सहज युक्तियां बताई हैं। हठ नहीं सिखाया है, कोई एक एक कर्मेंद्रिय को जीतने के लिए गुफाओं में जाकर के तपस्या करना नहीं बताया, हठ से कर्मेंद्रियों को मारना कंट्रोल करना नहीं सिखाया, लेकिन स्मृतियां दिलाई, तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कहां चलना है। स्मृतियों से शक्ति आ गई, समर्थी आ गई। जितनी स्मृतियां अंदर रहती हैं उतनी आत्मा समर्थ बनती है, शक्तियों से संपन्न बनती है। हम सभी चेक करें कि बाबा ने जो हम सबको स्मृति दिलाई, पहली स्मृति दिलाई, बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप हड्डी और मांस का पुतला नहीं हो, आप एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। इस आत्मिक स्थिति में जितना रहोगे ये कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में आती जाएंगी। रोज अपनी दरबार लगाओ, अपने आप से बातें करो। आत्मा की तीनों मुख्य शक्तियां और पांच स्थूल कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिनको कहा गया है, आठों कर्मचारियों से अपना समाचार रोज पूछो। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों पर आत्मा का कितना शासन है। कहना मानते हैं, जब संकल्प करूं, मन को ऑर्डर करूं और बाबा के पास ले चले, वाहन बन जाए, मन वाहन बन जाए आत्मा के लिए, और वो यात्रा अपने घर की कराए, अपने अव्यक्त वतन और मूल वतन की कराए। यदि आत्मा अपनी इन सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास करती है, तो पवित्र जीवन जीना उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। और अगर उसने अभ्यास नहीं किया है तो युद्ध और मेहनत करनी पड़ती है, कई आत्माएं हार भी खा लेती हैं। 10 साल 15 साल 20 साल चलने के बाद भी बाबा कहता है माया कभी कभी थप्पड़ लगा देती है। और बाबा कहता है मैं अपनी बेटी को, माया बेटी को कहता हूं, चेक करो ये सतयुग के लायक हैं या नहीं। चैलेंज तो करते हैं हम, विश्व परिवर्तक हैं हम, भगवान के मददगार हैं हम, राइट हैंड हैं हम, इस नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हैं, लेकिन अपने मन और बुद्धि पर इनका कहां तक कंट्रोल है, कहां तक अपनी कर्म इंद्रियों को इन्होंने अनुशासन में रखा है। माया चेक करने के लिए आती है, हर एक अपने आप से चेक करता जाए, पूछता जाए, क्या सचमुच मैं आत्मा इतना विदेही अशरीरी इस शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करती हूं। ये आसन मेरा पक्का है कि जब चाहूं इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके हरेक के आत्मा रूपी मणि को देखूं। बाबा कहते हैं ये सांप जो है शरीर का, वो डसता तभी है जब तुम्हारी नजर आत्मा रूपी मणि पर नहीं जाती। हरेक आत्मा रूपी मणि को देखने का अभ्यास करो, पवित्रता सहज हो जाएगी, कभी भी तूफान परेशान नहीं करेंगे, विजय का अनुभव होगा। आसन पर आत्मा जब बैठती है मालिक बन करके, जो चाहे वो संकल्प करे, ये दृष्टि तो स्थूल चीज है, इससे देखने वाली जो चैतन्य शक्ति है अगर वो कंट्रोल में आ गई तो आत्मा राजा बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है, आत्मा पावन बनती जाती है। तो सबसे पहला अभ्यास, यदि हम आप चाहते हैं सचमुच बाबा जैसा हम बन जाएं, बाबा कैसा है, इवर प्योर, कोई भी दाग नहीं है उस हीरे में। इतनी चमक है, इतनी प्योरिटी है, इतनी लाइट है। चलो उसने तो देह नहीं ली, विदेही है, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा ने तीन अभ्यास करके संपन्न स्थिति को प्राप्त किया। पहला अभ्यास किया मैं आत्मा हूं, निराकार हूं, निराकारी स्थिति में रहने का। दूसरा अभ्यास किया निर्विकारी स्थिति से कर्म इंद्रियों को पावन बनाने का। और निर्विकारी बनने के बाद जो विकार आता है, बहुत सूक्ष्म है वो। कोई योगी बन जाए, कोई निर्विकारी बन जाए, विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसके बाद कौन सा विकार आता है? बहुत सूक्ष्म अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं। निरहंकारी बन गया बाबा, कभी भी नहीं आया कि मैं कुछ करता हूं, अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखा। मैं अच्छा सुनाता हूं, मैं अच्छा पुरुषार्थी हूं, मैं अच्छा योगी हूं, इस अहंकार को भी समाप्त कर दिया। क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म दबा हुआ, छिपा हुआ अंदर रहता है। जब कोई पुराने हो जाते हैं, 10 साल 20 साल ज्ञान में चलते हुए होते हैं, तो उन्हें एक सूक्ष्म अहंकार आता है कि मैं अनुभवी हूं। अनुभवी स्वरूप का भी एक अहंकार कई बार अन्य आत्माओं को अपमानित करा देता है, डिसरिगार्ड कराता है। बोल में वो मुस्कुराहट, वो मधुरता नहीं रहती, कड़ुआपन दिखाई देता है। अगर सूक्ष्म छिपा हुआ अहंकार है तो उसकी भाषा कैसी होगी? कटाक्ष की, हर एक को करेक्शन करने वाली, हर एक पर दबाव डालने वाली। अपनी निमित टीचर्स पर भी कई भाई बहने दबाव डालने लगते हैं, ये कल की आई हुई मुझे क्या पढ़ाएगी, ये मुझे क्या सिखाएगी, मैं बहुत पुराना हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, इसको तो ये बात पता ही नहीं है। जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, जिसको बाबा ने गद्दी सौंपी, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये बहुत सूक्ष्म दबा हुआ अहंकार निर्विकारी बनने के बाद भी छिपा रह जाता है। इसलिए बाप समान संपूर्ण पावन बनने के लिए एक निराकारी स्थिति का अभ्यास, दूसरा एक एक कर्म इंद्रिय को पावन बनाने के लिए निर्विकारी स्थिति का अभ्यास, और साथ साथ एक आत्मा अंदर से महसूस करे कर्तापन के भान से मुक्त होकर निरहंकारी बनने का अभ्यास। आप देखेंगे पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी, अनुभव होगा कि आत्मा मर्यादा के कंगन के, मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है। बाबा ने हम सब के आगे, जितने बाबा के बच्चे हैं सबके आगे, एक बहुत अच्छी मर्यादा की लकीर बना करके दी है, लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा नहीं, लेकिन मन को जो लक्ष्य दिया है, कौन सा? तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है। उस लक्ष्य को मन में रखकर, अपनी स्मृतियों में रख करके हम पुरुषार्थ की रेस करें। हमारा ये लक्ष्य है कि हमें ही बनना है, और उस लक्ष्य के अनुसार हमारे जीवन में वो लक्षण आते जाएं। पुरुषार्थ ही उसको ही कहा जाता है। लक्ष्य अलग हो और लक्षण अलग हो। हम कहें हम तो बाबा के घर में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, मनुष्य से देवता बनने की यहां पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन वो देवता ही लक्षण, वो रायल संस्कार, वो प्योर संस्कार, उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, उनका बात करना, क्या उस लक्ष्य के प्रमाण उनके लक्षण दिखाई देते हैं? बाबा इस वर्ष हम सबको कहते हैं, कह रहे हैं कि बच्चे अभी वाचा की सेवा का समय समाप्त हो रहा है, आपका चेहरा, आपकी चलन सेवा करेगा, यही म्यूजियम बनेगा और इसी से लोगों को बाबा दिखाई देगा। चेहरे और चलन के अंदर कौन है? आत्मा की शुद्धता। अगर जितनी आत्मा शुद्ध और प्योर बनती जा रही है, उसके नयनों से वो रूहानियत, वो चेहरे से मुस्कुराहट, वो अपनेपन की फीलिंग, वो आकर्षण अपने आप दिखाई देती है, लगता है ये मर्यादा के अंदर बंधी हुई आत्मा है, ये कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। एक नियम है, एक मर्यादाएं हैं। नियम बाबा ने हम सबको अमृत वेले से रात्रि तक के लिए बहुत अच्छे नियमों में बांधा है। कुछ भी हो जाए बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले मेरे से मिलो, ये नियम है। अमृत वेले का समय हम सबके लिए प्रभु मिलन का है, उस प्रभु से बातें करने का है। कोई सो नहीं सकता है, बाबा हिलाता है, जगाता है। अगर वो सचमुच सच्चा पुरुषार्थी है तो अमृत वेला उसका मिस नहीं हो सकता है। दृढ़ता का संकल्प है, अपने आप नींद खुलती है। सकाश ले लो अब सवेरे सवेरे, ज्ञान सूर्य की किरणें ले लो, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, हिलाने वाली पेपर समाप्त हो जाएंगे। नियम अनुसार मुरली सुनना, उस पर अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, उसको स्वरूप में ढालना। ऐसे नहीं, मुरली तो वही है, कई लोग ऐसे कहते हैं। मुझे वंडर लगता है कि आपको मालूम है मैंने कितनी बार मुरली पढ़ी होगी। 76 से मैंने मुरलियां टाइप करना शुरू किया है, हर एक मुरली इसी हाथों से निकली है, दूसरे हाथ से नहीं निकली है। एक बार नहीं, पहले तो स्टेंसिल का जमाना था, टाइप करते थे मैनुअल, अभी कंप्यूटर युग आ गया, और एक मुरली कम से कम 3-4 बार तो स्टेंसिल पर टाइप करनी होती थी, उसको करेक्शन करना पड़ता था, मेरे पास कोई साथी नहीं था उस समय। बार बार वही मुरली पढ़ना, वही चिंतन करना, वही काम करना, और कोई काम ही नहीं था। बाबा कल परसों कह रहे थे 5-6 बार मुरली पढ़ना चाहिए, हमने कहा शायद बाबा ने मुझे सेवा ऐसी दे दी है तो 5-6 बार क्या कई बार, अनेकों बार पढ़ लिया होगा, लिस्ट ही नहीं रही। मुरली का इतना गहरा अध्ययन हो, एक एक बात हमारे स्वरूप में आती जाए, चिंतन में आ जाए, वैसा ही चिंतन चलने लगे जो व्यर्थ चिंतन अपने आप समाप्त हो जाए। ये व्यर्थ आ गया, ये विकल्प आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, क्योंकि माया का साम्राज्य है। माया के साम्राज्य में आप सभी जी रहे हो, माया की बातें नहीं आए ऐसा नहीं होता है, लेकिन माया प्रवेश तभी करती है जब हम इंटरेस्ट लेते हैं। अगर इंटरेस्ट समाप्त हो जाएं व्यर्थ देखने, सुनने और बोलने के, बहुत कुछ माया परोस रही है हम सबको व्यर्थ की ओर ले जाने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे सीरियल निकल गए हैं टीवी के, आकर्षण के बहुत ऐसे माया के पंप निकले हैं, जो अगर कोई अलबेली आत्मा है, कितना भी पुरुषार्थ ऊपर से दिखावे का कर ले, उसके स्वप्न, उसकी नींद, उसकी मनोवृत्तियां पावन नहीं बन सकती अगर उसका ध्यान आजकल की मायावी चीजों की ओर है। तो इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे ऐसी चीजें मत देखो, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के बंधन में बंध करके रहो। हमें अगर योगी लाइफ जीनी है, पवित्र जीवन बनानी है, अपने स्वप्न और संकल्पों को पावन करना है, अपनी एक इंद्रिय को पावन बनाना है, तो बाबा कहता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये पांचों मंत्र हम सबको पक्के हों। देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है और करना भी नहीं है। अगर कोई आत्मा इस बात को दृढ़ता से नहीं लेती, देख लिया क्या हर्जा है, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, खा लिया तो क्या हर्जा है। बाबा कहता अच्छा तुमने बहुत अच्छी स्थिति बनाई है, तुम्हारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर तुमको देख करके कोई आत्माओं ने अलबेली हो गई, कोई आत्मा अलबेले होकर के भूल कर ली, तो उसका दंड किसके ऊपर आएगा, उसकी भोगना किसको भोगनी पड़ेगी, क्यों आप अलबेले बने। आप समझते हो मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपके पीछे जो रचना है, जनरेशन है, जो अनेक नई नई ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो रही हैं, अगर वो कमजोर होकर के माया से हार खाती हैं, तो उसकी जवाबदारी, उसका बोझ भी आपके ऊपर आ जाता। इसलिए बाबा कहता बच्चे स्लोगन याद करो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, जो करेगा वो पाएगा, मैं क्या कर रहा हूं। इस मर्यादा के कंगन को मजबूत बांध करके दृढ़ता के संकल्प के साथ पवित्रता की पालना करनी है। अगर पवित्र जीवन सचमुच हम बनाना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं कि हम बाबा जैसे बने, हमारे चेहरे से रूहानियत दिखाई दे, हमारी दृष्टि में वो रुहाव आ जाए, जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, गुलजार दादी को देखो, कैसी दृष्टि, कैसी चेहरा, कैसा एकदम फूल जैसा, कितनी मुस्कुराहट है, कितनी आत्मा की प्योरिटी उनके चेहरे से झलकती है। कल दादी बता रही थी कि कुमार का दादी, बाबा ने नाम दादी का क्यों दिया, सबसे नंबर वन पवित्र कुमारी, इसलिए कुमार का पावन कुमारी को कहा। ऐसा पुरुषार्थ करके ही तो आत्माएं बनी है, बिना पुरुषार्थ के तो नहीं बनी, इन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया है तब ऐसी मंजिल पाई है। हम सभी भी इनको फॉलो करते हुए यदि हम श्रेष्ठ मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आवश्यक है हम लौकिकता को अलौकिकता में बदल दें। जहां जहां लौकिकता है, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, सोना, जो लौकिक रीति रस्म से हम चल रहे थे, अलौकिक जीवन में उनकी परहेज है। अगर हम पावन बनना चाहते हैं बाबा के जैसा, तो इसकी परहेज रखनी पड़ेगी। लौकिक रीति से हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हैं, बोल चाल भी वैसा नहीं बोल सकते हैं, ड्रेस भी वैसी नहीं पहन सकते हैं, भले पति पत्नी ही क्यों न हो, सो भी नहीं सकते हैं। नियम माना नियम, दृढ़ता माना दृढ़ता। अगर हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, अपने मनोवृत्तियों को संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं, तो व्रत लेना पड़ेगा। बिना व्रत के वृत्तियां परिवर्तन नहीं हो सकती हैं। जो आंतरिक वृत्तियां हमारी बनी हुई हैं, फौरन दृष्टि दूषित हो जाती है, चंचल हो जाती है, संकल्पों में तूफान आ जाते हैं, विकारी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। हमने व्रत नहीं लिया है, व्रत कुछ भी हो जाए, भक्ति में व्रत लेते थे निर्जल रहेंगे तो चाहे सांस चली जाए लेकिन जल नहीं पिएंगे, ये भक्ति का व्रत था। बाबा कहता है संगम युग पर व्रत लो, एक व्रता, एक बाबा दूसरा न कोई, संकल्प में भी कोई आत्मा मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव और दबाव नहीं डाल सकती। अपने आप को अंदर अंदर पक्का करना कि मेरे बाबा ने मुझे एक व्रता का व्रत दिया है, एक को देखना है, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग संबंध निभाऊं। ये है संपूर्ण पवित्रता की धारणा। भले साथ रहो, प्रवृत्ति में रहो, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति निवृत्ति, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अगर दिल के अंदर छाप लग गई, अंदर बसने लगा बाबा, सब लौकिक जीवन अपने आप चेंज हो जाएगी। लौकिकता जो है, संबंधों में भी लौकिकता है। बाबा ने लौकिक जन्म लिया और दिया तो आप सबने देखा, बाबा की अपनी युगल बाबा को बाबा कहती थी, जसोदा मैया जिसको कहते हैं, बाबा को कभी भी युगल के रूप में नहीं देखा। इतनी भावनाओं में परिवर्तन आ गया, जो युगल की वृत्ति भी चेंज हो गई, बाबा है, सबका बाबा है, मेरा बाबा है। एक अंदर से वृत्तियों में परिवर्तन चाहिए, ऊपर से दिखावे कि नहीं, ऐसे नहीं युगल रहते हैं साथ में और कहें भाई जी बहन जी, बाबा कहता है ये भी नियम है, ये भी कहना नहीं होता। अंदर की भावनाओं में परिवर्तन चाहिए, अंदर से आ जाए कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, आत्माएं साकार स्वरूप में भाई बहन हैं, हमारी मनोवृत्तियों में वो पवित्रता और शुद्धता आ जाए। स्थूल रूप में तो साथ रह रहे हैं, निभा रहे हैं, संबंध हैं, हिसाब किताब है, चल रहा है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए वृत्तियों में उपरांता आ जाए तब कहेंगे पर वृत्ति है, वृत्ति परे हो गई है। और वो वृत्ति तब चेंज हुई जब व्रत अंदर पक्का है कि एक बाबा दूसरा ना कोई। चेक करना अपने आप को, मेरे आदि और अनादि स्वरूप की निरंतर स्मृति रहती है, जैसा बाबा मुझे चाहता है देखता है वैसा हूं। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें ही मैंने बनाया था, दूसरे अभी बनने वाले नहीं हैं। दूसरे कोई आएंगे क्या बनने के लिए? तुमको ही बनाया था और तुमको ही बनाऊंगा। इसलिए बाबा के प्यार से, पढ़ाई से, एक तपस्या करके, योग के बल से, बीज रूप बाबा की याद से विकारों के बीज को भस्म करो, सूक्ष्म भी समाप्त हो जाए। एक काम को जीत लिया, ब्रह्मचारी बन गए, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्माचारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया है, आचरण में लाया है, जो कुछ उच्चारण किया है, आपके जीवन में आ जाए, वही बोलो, वही सुनो, वही करो, जो कुछ बाबा ने किया। और बाबा ने क्या क्या किया है, बाबा की मुरली इसका स्पष्ट आईना है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे प्रवृत्ति में रहा, कैसे न्यारा प्यारा रहा, कैसे निरहंकारी रहा, कैसे सबके बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त भाव में रहा, बाबा अपने सब अनुभव अपनी मुरली के अंदर सुनाता है, कोई इसे पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं। हम सभी बाबा को फॉलो करते हुए बाबा के समान बनना चाहते हैं तो बाबा ने क्या किया है वो आचरण में आता जाए, वही निकले जो बाबा ने सुनाया है, और कुछ बोलना नहीं है। संपूर्ण पवित्रता के अंदर एक स्टेज आती है, कामनाएं समाप्त हो जाएं। एक है काम जीत और दूसरा है कामना जीत। कामनाएं भी काम विकार का एक सूक्ष्म अंश है। कामनाएं कई बार बहुत जागृत होती हैं, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, चीजों की भी हैं, साधनों की भी हैं, लेकिन सूक्ष्म में मान शान महिमा कुछ किया, कुछ तो कोई कहे महिमा प्रशंसा तो हो, कोई के सामने तो आऊं, नजरों में तो आऊं, स्टेज पर तो आऊं। बहुत सूक्ष्म कामनाएं अंदर रहती हैं। यदि मैंने संपूर्ण कामजीत स्थिति को प्राप्त किया है, संपूर्ण पावन मैं बना हूं, तो अपनी सूक्ष्म कामनाओं पर ध्यान दो कि कोई भी प्रकार की कामनाएं उनका भी मैंने नाश किया है। उसकी सबसे अच्छी निशानी एक बताता हूं आपको, जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं वो हर चीज का सामना सहज कर सकता है, बहुत सहज रीति से पार कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी विघ्न कोई भी रुकावट आ जाए, उसके पास सामना करने की पार करने की शक्ति होती है। आपस में सामना नहीं, लेकिन कोई भी बुराई पर, कोई भी विकार पर, कोई भी विघ्न पर, कोई भी परिस्थिति पर सहज सामना करके वो विजयी बन सकती है। अगर कामना नहीं है तो, कामना है तो सामना नहीं किया जा सकता है। इच्छाएं हैं तो समस्याएं नया नया रूप, नया नया जन्म लेंगी। इसलिए आत्मा से इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, कामना जीत बन जाए, हर विकार पर संपूर्ण विजय हो जाए, अनासक्त वृत्तियां हो जाएं, इसके लिए तपस्या की जरूरत है। कोई भी दूसरा साधन नहीं है, पढ़ाई क्लासेज ये साधन नहीं है। ये ठीक है, हमारे को रिवाइज होता है, बल मिलता है, लेकिन एक अंदर की लगन, अंदर की बहुत अच्छी तपस्या, तपस्या को कहा जाता है दूसरे शब्दों में दृढ़ता। जहां दृढ़ता है संकल्पों की, वहां तपस्या है। अगर हम संकल्प में दृढ़ता ले आते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे बाबा जैसा संपूर्ण बन करके, पावन बन करके, बिना सजाओं के वापस जाना है, नहीं तो सलाम भरना पड़ेगा। जाएंगे तो सभी, कोई सलाम करके जाएंगे, कोई झुक करके नमस्कार करके जाएंगे, तो हम सभी कैसे जाएंगे? बाबा कहता है अब अंतिम समय है, और अंतिम समय में मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं तो मैं बराती बन करके, बराती नहीं लेकिन साजन और सजनी बना करके साथ ले जाऊंगा, तो हम सभी बाबा के साथ साथ चलेंगे ना, उड़ेंगे, उड़ सकते हैं, ऐसे पंख हों। अगर हिम्मत आपकी है तो मदद बाबा की है, मदद करता है। हिम्मत कभी नहीं हारना, क्या करूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं ऐसी प्रवृत्ति में पला हूं, मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाबा कहता अगर बहुत सोचोगे तो पहाड़ बन जाएगा, सोचना नहीं ज्यादा, तो मुझे अर्पित कर दो और लाइट बन जाओ, मैं मदद करूंगा तुम्हें विजयी बनाने में। तो हम सभी बाबा को सामने रखते हुए एक डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें कि सचमुच ब्राह्मण बने हैं तो ये मौज की जीवन है, युद्ध और मेहनत की नहीं। ज्ञान का चिंतन करो, बुद्धि को बिजी रखो, अच्छे अच्छे विचार दो, बुद्धि को अच्छा भोजन दो, व्यर्थ आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा ही नहीं। केवल परहेज यही है कि जो कुछ माया परोस रही है, देखना सुनना पढ़ना, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करो, नहीं तो कभी भी मन बुद्धि को शुद्ध शांत रहने नहीं देगी। इसलिए मन और बुद्धि शुद्ध और शांत रहे, आत्मा सुख की सैया पर रहे, दुख के नाम निशान से मुक्त हो जाए, ऐसी आत्मा पवित्र स्वरूप बने, तो जहां पवित्रता की जननी है वहां सुख शांति के बच्चे उसके साथ साथ रहते हैं। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करके बाबा से सकाश लो, शक्ति लो, और अपनी दृष्टि से प्रकृति को पावन बनाने के लिए पवित्रता के वाइब्रेशन दो। पवित्रता के वाइब्रेशन जब फैलेंगे विश्व के अंदर तो ये प्रकृति चेंज हो जाएगी, इसका तमोगुण समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति परिवर्तन, संसार परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन का आधार हमारी मनसा की संपूर्ण पवित्रता ही है। तो हम वचन और कर्म के साथ साथ वचन में भी इतनी मधुरता आ जाए, इतनी सरलता आ जाए जो किसी आत्मा को दुख नहीं देना, क्योंकि दुख देना और दुख लेना ये भी एक अपवित्रता है। तो हम सभी ऐसी संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करके बाबा की पालना का रिटर्न करेंगे। ओम शांति।
व्यावहारिक पवित्रता क्या है उसकी संपूर्ण परिभाषा आज भाई जी ने हम सभी को समझाई है। हम सिर्फ न सुनेंगे लेकिन सुनने के साथ साथ स्वीकार करें, और स्वीकार करने से भी ऊपर की मंजिल है स्वरूप में लाए। फिर से आपका दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। एक मिनट हम सब साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद आप सभी यहीं बैठेंगे, आप सबके प्रति कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं।